Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2342 1050, or 2331 0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taaza ank ke saath. इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करेंगे दुनिया के केंद्रीय बैंकों के बारे में, खासकर यूएस फेड के बारे में जहां की बैठक होनी है अगले सप्ताह। और आज शनिवार का दिन है, श्रोता चाहें तो आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इकॉनॉमी से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित। हमारे नम्बर्स हैं 2331 44 23 42 10 50 और 23 310 464। इन तीनों नंबरों में से किसी पर फोन करें, अपने सवाल पूछें, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध है फाइनेंशियल एनालिस्ट शरद कोहली। शरद, बहुत बहुत स्वागत आपका।
वार्म वेलकम शरद।
धन्यवाद हर्ष, थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन।
शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्लिश में हेडलाइंस।
डोमेस्टिक मार्केट सर्ज टू फ्रेश हाई दिस वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी जंप 2%. Center removes the floor price on export of basmati rice. And US markets rise ahead of Fed meet next week. All three major indices rise to nearly 2-week high.
इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में नई ऊंचाई रही, सेंसेक्स निफ्टी 2-2% बढ़े। केंद्र ने किसानों के हितों को देखते हुए बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात न्यूनतम मूल्य हटाने का फैसला किया। और यूएस फेड की बैठक से पहले अमरीकी शेयर बाजारों में भी तेजी रही।
Erasing last week's losses, domestic markets jumped 2% to hit a fresh record high in the volatile week, led by positive global and domestic data. Indian market rose on global rate cut optimism, which provided an impetus across the world. The European Central Bank lowered its deposit rate by 25 basis points to boost tepid growth. The U.S. Federal Reserve is set to announce its interest rate decision next week. The Sensex rose 1,707 points, or 2.1%, during the week to close at 82,891. The Nifty added 504 points, or 2%, to end at 25,357. Both the benchmark indices touched a fresh record high on Thursday. In the broader market, BSE mid-cap index jumped 1.5% and the small-cap index surged 2%. At the forex market, the rupee appreciated 5 paise to end the week at 83.89 against the dollar. We've got two callers online with us, one from Kolkata, other from Raigarh. First, we go to Raigarh and say hello to Kush. A warm welcome. Kush, please ask your question.
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग
सर को मेरा नमस्कार।
जी
नमस्कार कुछ
सर, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि न्यूज किस तरह से स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट डालता है, और दूसरा मेरा सवाल है कि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्या अंतर है।
चलिए कुछ आपका पहला सवाल मुझे ज्यादा मार्केट मंत्रा से रेलेवेंट लग रहा है कि न्यूज किस प्रकार स्टॉक मार्केट पे सारी खबरें जो आती हैं कुछ वो तो न्यूज के फ्लो के तरह ही आती हैं। मुझे लगता है न्यूज तो अगर मैं कोई इसकी परसेंटेज तो नहीं निकाली जा सकती, मुझे लगता है कि 70-80% से भी ज्यादा जो इफेक्ट है स्टॉक मार्केट पे न्यूज को होता है। अब न्यूज का मतलब तो हर तरीके की न्यूज, चाहे कंपनी के रिजल्ट हो, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट हो, कोई जियो पोलिटिकल न्यूज हो, तो आप मेरे से पूछे तो न्यूज के बेसिस पे ही चलता है। अब न्यूज किस प्रकार की है ये एक अलग बात है कि किसी प्रकार की न्यूज का कोई इम्पैक्ट होता है किसी प्रकार की, बाकी तो स्टॉक मार्केट तो न्यूज की इंतजार ऐसे करता रहता है जैसे क्रिकेट फील्ड पे फील्डर के ऊपर जब कैच आ रही होती है तो हाथ खोल के वो वेट करता है कि कब मेरे हाथ में आए। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही न्यूज का इंतजार करता रहता है, हर वक्त ही न्यूज पे नजर रहती है। कई बार होता है थोड़े टेक्निकल फंडामेंटल मूव पड़ती है, बस ज्यादातर उस पर चलती है। दूसरा, आपने कोर्स के बारे में पूछा, बीए ऑनर्स और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या उसके बारे में पूछा। वैसे तो ये एकेडमिक प्रोग्राम नहीं है, पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैं समझता हूं उसके बारे में जरूर बता सकता हूं क्योंकि मैं स्वयं इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इकोनॉमिक एनालिसिस में, जिन्होंने कॉमर्स की दुनिया में भी जाना है, वो लोग भी इकोनॉमिक पे जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हैं वो लोग इकोनॉमिक्स को मेजर लेते हैं। बाकी कुछ ये सवाल आपका एकेडमिक है, मुझे नहीं पता कि आकाशवाणी पर कोई एकेडमिक प्रोग्राम आता है तो जिसमें आप ये प्रश्न कर सकते हैं। यहां तो आप आर्थिक, बिजनेस और फाइनेंस जगत के प्रश्न कर सकते हैं।
अनिमेश कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए। अनिमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है?
गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग,
दिस इज अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता। सर, हाउ विल इंडस्ट्रियल रोबोट मेक इंडियन इकोनॉमी ग्लोबली कंपेटिबल इन फ्यूचर बिकॉज इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर कमिंग। Thank you, sir.
Well, I think the world of robotics, I think, is picking up very fast. If you go to the developed world, say we go to Japan, we go to some parts of US, we go to Europe, we today have robots serving you in the restaurant as well. You know, they come with a menu, you order. Then in the industrial manufacturing, I have seen most robotics coming in automobile sector. If you ever go to a modern automobile manufacturing plant, you will find that a lot of things, including tightening of the screws and you know fitting in a lot of parts in a car or a vehicle, are being done by robots. So I think robots are causing an industrial revolution, I would say. Although it has got a downside also, because in a populous country like India, some of the jobs sometimes go to robots because you don't need people, and sometimes you do need labor to be employed. But I'm sure robot building itself is a big industry and a lot of people will be absorbed there as well. But to answer your question, broadly speaking, I would say that it is causing an industrial revolution. It is improving the productivity. It is improving the efficiency. It is improving the timeline in which a raw material gets converted to a product. Overall, I think a win-win situation. And as with the flux of time, we are also finding that the cost of these robotics is going down. You know, they are not as expensive as they used to be. So a very bright future for robots. I would say they would be part and parcel of our life in some time in very near future.
Joining us from Mumbai is Ratnakar. A warm welcome, Ratnakar. Please ask your question. Ji.
Hello, good evening, sir.
Good evening.
मेरे दो सवाल हैं छोटे-छोटे। एक पहला सवाल है कि जो बड़े-बड़े कंपनियां बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं, स्प्लिटिंग का डिक्लेयर कर रहे हैं।
जी।
तो बिफोर बोनस के पहले शेयर लेना उचित रहेगा? स्प्लिट के पहले शेयर लेना उचित रहेगा कि बाद में बोनस के बाद और स्प्लिट के बाद शेयर लेना उचित पड़ेगा? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है, अभी मैंने 3-4 कंपनी के लिए आईपीओ के लिए अप्लाई किया
जी,
इट इज थ्रू एक हमारे मोतीलाल ओसवाल के थ्रू किया था और पेटीएम के थ्रू किया था
जी,
लेकिन उसमें कौन से भी मुझे आईपीओ नहीं लगे। लेकिन रीजन ये आया कि टेक्निकली रिजेक्टेड। तो
अच्छा।
मेरा कहना है कि एक पैन के अंदर एक ही एप्लीकेशन करना चाहिए क्या? दोन जगह से एप्लीकेशन किया, ये रॉन्ग था क्या?
रत्नाकर जी, आपका पहला सवाल है कि बोनस से पहले लेना चाहिए, स्प्लिट से पहले? देखिए, एक डेट अनाउंस होता है स्टॉक मार्केट में जिसको हम एक्स बोनस कहते हैं या एक्स स्प्लिट कहते हैं, एक्स डिविडेंड, आपने सुनी होगी ये डेट, काफी शेयर मार्केट में सुनाई देती है। तो उस डेट से पहले जो लोग ले लेते हैं वो बोनस का लाभ उठाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम मैथमेटिकली मार्केट उस प्राइस को एक्स बोनस होने के बाद अपने आप एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि ऐसे तो एक डेढ़ से पहले इतना रश हो जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। तो अपने आप ही मार्केट स्वाभाविक तौर पर अगर वो मान लीजिए कम बोनस है, उसका उल्टा कम बोनस होता है, कम बोनस है और एक्स बोनस के बाद जो है ऑटोमेटिक प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाता है। तो कुछ कंपनीज में कई बार जब बहुत ज्यादा तेजी हो या बहुत ज्यादा गिर रहा हो तो एकदम कम बोनस एक्स बोनस, कम स्प्लिट एक्स स्प्लिट, कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, पर ऐसा अमूमन नहीं देखा जाता है। तो अगर मैं आपके सवाल का रत्नाकर जी सीधा जवाब दूं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है तो आप बोनस डिक्लेयर होने से पहले उसको ले लीजिए, आपके पास खुद ब खुद ज्यादा शेयर्स हो जाएंगे, पर वो लंबी अवधि में होंगे, एकदम आपको ऐसा कोई बंपर प्रॉफिट मुझे ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। दूसरा आपका सवाल था आईपीओ में तीन चार आपने अप्लाई किया, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर अब एक ही पैन नंबर पे करेंगे और खासकर जो आईपीओ हेविली ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं वहां पर फिर अलॉटमेंट के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। तो जो आपने बिल्कुल
टेक्निकली रिजेक्टेड
यही था कि उन्होंने एक से ज्यादा पैन पे किया हो, या हो सकता है आईपीओ का फॉर्म भरने में डिटेल्स भरने में कोई गलती रह गई हो, ये भी कई दफे हो जाता है, आपने कोई कॉलम छोड़ दिया हो, तो उसके खासकर जब ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ऐसे में फिर जिन फॉर्म्स में तकनीकी कमी रह जाती है उनको फिर छोड़ दिया जाता है। तो आईपीओ तो आते रहते हैं रत्नाकर जी, मेरी सलाह ये है कि आप लगे रहें और आई एम श्योर आपको आगे आएगा। पर आईपीओ का जो चयन है, जो सिलेक्शन है, ये मैं सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए, आजकल आईपीओ की बाहर आई हुई है और खासकर एमएसएमई के आईपीओ बहुत आ रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे केसेस सुनने में आए, मैं कभी मौका लगा तो उदाहरण दूंगा, जहां 400 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो गए, 12 करोड़ की मांग थी 4800 करोड़ रुपए आ गए, 8 करोड़ की मांग थी 100 करोड़ रुपए आ गए।
कंपनी में तो 8 एम्प्लॉई ही थे।
जी 8 एम्प्लॉई थे, तो हम यहां क्योंकि नाम नहीं लेते हैं कंपनी का, तो मेरे आईपीओ का रत्नाकर जी चयन, कुछ लोग आंख बंद करके सब आईपीओ में करते जाते हैं, फिर उसके बाद कई बार लिस्टिंग गेन्स तो छोड़िए वो शेयर वापस आ ही नहीं पाता है। तो सभी श्रोताओं को मेरी हिदायत है, ये एडवाइस है कि आईपीओ का पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है उसको ध्यान से पढ़ें, कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स पढ़ें, भीड़ चाल नहीं होनी चाहिए कि मेरे चार दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी कर दूं, आपका खून पसीने की मेहनत का पैसा है तो उसको बहुत सोच समझकर निवेश करना चाहिए। और आईपीओ की कोई ये मत सोचे कि बस निकल गई, आगे बहुत सारे आईपीओ
आने वाले हैं, बल्कि शरद आईपीओ की बात हो रही है, हमारे कई श्रोताओं ने हमसे जानना चाहा है कि क्या अब कोई भी छोटी कंपनी, कोई भी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपना आईपीओ ला सकती है बहुत ही आसानी से।
देखिए उसके लिए क्राइटेरिया है, आपको पता होगा एमएसएमई के जो आईपीओ हैं वो जनरली 50-60 करोड़ से नीचे के होते हैं और वो बहुत लिमिटेड वे में एक्सपोजर होते हैं, पर उसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि कुछ कंपनीज बहुत छोटी भी होती हैं और उसमें आगे, क्योंकि आपको पता होगा जब हम स्मॉल सेक्टर की बात करते हैं, स्मॉल कैप की बात करते हैं, तो वहां पर हम एक रिस्क शब्द जोड़ देते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, और ये तो स्मॉल छोड़िए आप माइक्रो कैप में चले गए तो यहां पर और ज्यादा रिस्की रहता है, तो इसलिए सोच समझ के करना चाहिए।
जो कॉम्प्लायंसेज हैं वो सेबी से अलग हैं, सेबी सीधे नहीं देखता?
नहीं, क्यों नहीं देखता है, बिल्कुल कोई भी आईपीओ हर्ष बिना सेबी के मॉनिटरिंग के नहीं आ सकता, वो एमएसएमई पूरी, बल्कि एमएसएमई तो मैं नहीं कहूंगा, एसएमई कहूंगा
जी,
वो बाकायदा सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार ही उनको परमिशन दी जाती है और मर्चेंट बैंकर्स इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि सभी कंप्लायंस पूरी की जाती है, पर फिर भी बहुत सारी कंपनीज बाद में फिर उतना परफॉर्म नहीं कर पाती हैं तो पैसे लोगों के मरते हैं, तो इसलिए भेड़ चाल मुझे लगता है नहीं
से बचना चाहिए,
बचना चाहिए। आप अपना विवेक, अपना रैशनल यूज करें, अपनी रिसर्च यूज करें, चार लोगों से पूछें थोड़ा सा, और देखिए एक तो बड़ा सीधा सा है, अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे तो थोड़ा आपको आपके पैसे के लिए पहले मेहनत करनी चाहिए।
बीरबल अगले कॉलर हैं दिल्ली से, बीरबल बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है?
नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, ये जो आईपीओ आती है एक तो रिटेलर के लिए, एक नॉन रिटेलर के लिए होता है, तो नॉन रिटेलर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है सर?
देखिए बीरबल जी, आईपीओ जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, कई दफे आपने शायद नाम सुना होगा या जिन श्रोताओं ने नहीं सुना उनके बता दूं, क्यूआईपी होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कई दफे किया जाता है। कुछ एफपीओ भी ऐसे आते हैं जो खाली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, तो वो तो रिटेलर्स के लिए होते ही नहीं है, जब रिटेलर के लिए नहीं होते बीरबल जी तो उसमें तो आप ऐसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ आपकी जानकारी के लिए एक अच्छी ये जानकारी है आपके नॉलेज बैंक के लिए कि वो खाली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, और उसमें बड़े बड़े चंक लिए जाते हैं, उसमें आप 100-200 हजार शेयर नहीं, वहां पर आपको बड़ा चंक उठाना पड़ता है जिसको हम ब्लॉक डील बोलते हैं, तो आपकी ब्लॉक एप्लीकेशन जाती है और खाली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए वो आईपीओ खोल, उसको जनरली हम आईपीओ नहीं कहते, हम एफपीओ कहते हैं, या हम उसको कई बार क्यूआईपी भी कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, पर वो रिटेलर्स के लिए नहीं होते। बड़ी अच्छी आपने बात पूछी, एक नई चीज है जो कि बहुत सारे रिटेल निवेशक शायद नहीं जानते।
जॉइनिंग अस नाउ फ्रॉम बेंगलुरु इज मिस्टर एन आर प्रसाद, वार्म वेलकम, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन।
Hi, good evening, Market Mantra. This is Anand Prasad from Bangalore. Good evening, Mr. Rajesh. Hi, Ranjan.
Yes.
Mr. Sharad Kohli, good evening to you.
Very good evening, Mr. Prasad.
First, Sharadji, I want to thank you. My idea too got approved. Whatever the information which you gave last time, all my travel abroad, all the information was got registered. Nothing has happened. Everything was okay.
Fantastic.
Thank you once again for that.
Fantastic. We'll ask for a laddu from you sometime.
Definitely, yes. Sir. My next visit to Delhi, definitely.
No, no. It'll only have to come through a radio.
For the entire team of Market Mantra.
Yes, Mr. Prasad, tell me.
One question continuing on that one. Kohliji, see, I bought 5 sovereigns of gold at US.
Mm-hmm.
And I got the bill. The jeweler shop gave me a bill in US dollars.
Mm-hmm.
So at Washington, D.C. airport, nothing has happened.
Mm-hmm.
But I traveled via London. Their customs asked me. I show the bill. They put a seal on that.
Mm-hmm.
I came back to India.
Mm-hmm.
Yeah, at Indian customs, they never bother to check this.
Mm-hmm.
So the bill is with me with the chapa at the London airport.
Mm-hmm.
Now, in case if I sell this 5 sovereigns of gold,
mm-hmm.
Would it attract income tax? I'm 100% sure that I'll make anything between 20 to 25% profit on that. So how do I go about it?
Yes.
What do I declare? What do I not declare?
Yes, Mr. Prasad, gold is a taxable commodity. So any profit that you make on the gold from the cost at which you purchased, you will have to pay tax. You must be aware of that. And if it is short-term capital gain, which seems like it since you've just bought it, so it's going to be taxed at your slab rate. If you're in the 30% slab, you will have to pay tax at the rate of 30%. But that should be okay because you made your money. So I think the government, you owe something to the government also. I don't think that chapa or tapa, whatever you're saying, is going to have any impact when you go and sell. They'll basically see the purity of the gold. They will see the hallmarking of the gold. If everything is okay, you can sell them, and you will have to pay tax on that without a doubt. If it is short term, you'll have to pay 30%.
Jitendra Jaipur se agle caller hamare hain. Jitendra ji, bahut bahut swagat. Sawal pooch le.
हाँ सर, मेरा ये सवाल है जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री राजस्थान के जैसे अभी गए हैं वहाँ पे जापान और दक्षिण कोरिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए
जी.
तो जैसे इन्वेस्टमेंट जैसे यहाँ पे जैसे वो कुछ लगाएंगे उनसे तो क्या राज्य सरकार को पैसा देंगे क्या मतलब ऐसे कुछ न कुछ तो देंगे ही और यहाँ से क्या यहाँ के मार्केट का उनको सेल हो यहाँ पे उनका फायदा कैसे उनको कैसे फायदा होगा विदेश वाले को क्यों लगाएंगे यहाँ पे कोई रीजन थी
कि यहाँ लगाएंगे. जितेंद्र जी देखिए, जब भी कोई निवेशक किसी दूसरे देश में पैसा लगाता है तो ये एक बड़ी पुरानी कहावत है, हर्ष और राजेश ने सुनी होगी, कि ताली दो हाथ से बजती है. तो दोनों तरफ का फायदा होता है. एक तरफ भारत का फायदा होता है, भारत में निवेश आता है, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगेंगी, यहाँ पर लोगों को जॉब मिलती है, सरकार को टैक्सेस आते हैं, खरीद फरोख होती है सामान की, ओवरऑल कॉमर्स एक्टिविटी बढ़ जाती है किसी निवेश आने से. और उस दूसरी तरफ वो भी खाली चैरिटी में तो आएंगे नहीं, अगर कोरिया जापान के निवेशक आएंगे तो भारत आज बहुत बड़ी एक मार्केट बन चुका है. और यही मंशा लेके यहां के जो मुख्यमंत्री हैं या भारत सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं वो जाते हैं कि आप आइए भारत में निवेश करिए. आज भारत दुनिया की एक चमकती हुई अर्थव्यवस्था है, पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है. मेरा एक अपना अनुमान कहता है कि यहां पर अब मिडिल क्लास 70 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है. तो इतनी बड़ी मार्केट, अमेरिका की पॉपुलेशन से डबल तो हमारी खाली मिडिल क्लास का साइज है, तो इतनी बड़ी मार्केट है. तो मुझे लगता है जो निवेशक आते हैं उनके लिए भी एक बहुत बहुत आकर्षित करने वाले ये आर्थिक पैमाने बन जाते हैं. भारत का इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है, सब कुछ बहुत, सरकार की नीतियां बिजनेस फ्रेंडली हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो निवेशक इन सब चीजों को देखते हैं. तो मैं अगर आपकी बात का बहुत संक्षिप्त में जवाब दूं जितेंद्र, तो ये ताली वाकई में दो हाथ से बजती है. एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, उस राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, दूसरी तरफ कोरिया जापान के निवेशक बड़े बड़े शार्प होते हैं. वो खाली मुख्यमंत्री जी के कहने से सीधा नहीं आते, वो अपना फायदा नुकसान देखते हैं कि उनकी कंपनी को लंबी अवधि में कोई लाभ होने वाला है कि नहीं. तो दोनों तरफ का फायदा देखा जाता है जी.
संजीव हमारे अगले कॉलर दिल्ली से ही जुड़े हुए. संजीव जी स्वागत है आपका, सवाल पूछ लें.
नमस्कार सर. सर जी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आपका.
हाँ नमस्कार संजीव, मैं भी, मुझे भी आपका बेसब्री से इंतजार था. संजीव बताइए
क्या बात है. सर लास्ट 6 मंथ से हम पोजीशन कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट बाउंड इंक्लूडेड होंगे इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में
जी.
इसमें बड़ा सरप्राइज हुआ कि हमें 75 ऐसी कोई अगर कोई चीज थी कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स उसमें हम इतने सालों बाद आए
जी।
और जिस बात के लिए पूरी मार्केट या हम भी एक्साइटेड थे कि इससे बहुत सारा कैश इनफ्लो होगा इंडिया में, ये कौन लोग थे जो पहले तो पहला पार्ट तो ये कि हमें इतनी देर में क्यों ऐसा अगर कोई इंडेक्स था तो हमें इतनी देर में क्यों आए, और सेकंड ये कि इसमें कैसे ऑटोमेटिकली जो हम एंथुसियास्टिक थे कि पैसा बहुत सारा आएगा वो कैसे आना था, इससे आपका ध्यान चाहिए।
संजीव जी देखिए पहले आपकी बात थी कि बहुत देर से आया, तो ये देर से आया तो देखिये जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट रेगुलेटर्स होते हैं उन लोगों के हाथ में होता है, उनके कुछ पैमाने होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर वो इमर्जिंग मार्केट और इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इंक्लूड करते हैं। हो सकता है उन पैमानों को हमने अब पूरा किया हो, कुछ कई दफे थोड़ी सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती है उसमें, कई दफे थोड़ा बायस भी रहता है, हो सकता है हम भारतीय बॉन्ड्स उस बायस का शिकार रहे हों और अब हमने उसको ओवरकम कर लिया। दूसरा आपने कहा कि इसमें इतना निवेश क्यों, तो इसमें निवेश संजीव जी एकदम नहीं आता है क्योंकि निवेश के जो संसाधन हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में वो बहुत सारे हैं, एफडीआई है, एफपीआई है, और भी बहुत तरीके से निवेश आता है। तो बॉन्ड्स तो एक तरीका, आप मान लीजिए बॉन्ड का रिटर्न 7% है, मैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बॉन्ड का रिटर्न 7% है, अगर मान लीजिए मेरे पास $100 मिलियन है निवेश करने के लिए, तो मैं अगर एक फैक्ट्री लगा देता हूं जिसमें मुझे 20% मार्जिन मिलता है मेरे प्रोडक्ट्स पे, 15% 20%, या मैं यूं कहूं कि 7% से ज्यादा मिलता है, तो मैं बॉन्ड रूट नहीं लूंगा, मैं फिर किसी और तरीके से निवेश करूंगा। और आपको अच्छा एग्जांपल दूं तो आप सीधा शेयर मार्केट में निवेश कर दीजिए किसी एफपीआई के थ्रू, तो उसमें तो आप देख रहे हैं बल्ले बल्ले हो रही है पिछले 2-3 साल से, तो उसमें ज्यादा रिटर्न। तो बॉन्ड में इंटरेस्ट जब बनता है संजीव, जब बाकी की मार्केट्स थोड़ी सी सबड्यूड हो जाती है, मतलब बाकी का रिटर्न सबड्यूड हो जाता है, फिर आप देखेंगे बॉन्ड एकदम चमकने लगेंगे। हम इंक्लूड हो गए हैं तो ये आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, बाकी के जब अल्टरनेट्स थोड़े से ठंडे पड़ जाएंगे तो इसमें आपको गर्मी देखने को मिलेगी।
Subhash joins us now from Rajasthan. A warm welcome, Subhash.
Namaskar sir, Market Mantra ka namaskar, colleagues aapko bhi namaskar.
Namaskar Subhash.
Sir, mera income tax se related ek question tha.
Ji.
Main public sector undertaking se retire hua hu abhi.
Ji.
To isse pehle jab main kaam karta tha to mera medical reimbursement hota tha, koi tax nahi lagta tha.
Ji.
Hamari company mein kehna medical reimbursement ki policy hai.
Ji.
25 lakh rupaye ki.
Ji.
हम मतलब 25 लाख खर्च कर सकते हैं उसमें
जी।
तो मैं डायबिटिक हूँ, अभी मैंने एक क्वार्टर का बिल पेश किया था उनको
जी,
तो उन्होंने मेरे को वापस किया, उसे 5% इनकम टैक्स काट दिया है
जी।
तो अभी जब हमारा रिइंबर्समेंट होता है तो समझ नहीं आया काटा क्यों है, और क्या मैं इसको इनकम टैक्स में क्लेम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ थोड़ा बताएंगे।
सुभाष जी पहले तो हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहे और पूरी तरह ठीक हो जाए, मैं तो यही कहूंगा। देखिए मेडिकल रीइंबर्समेंट को सुभाष कुछ समय पहले हटा दिया गया, इसलिए आपके एम्प्लॉयर ने उस पर टैक्स काटा है पहली बात तो। दूसरा अब इसकी डिडक्शन वगैरह मेडिकल की इतनी नहीं मिलती है, तो इसलिए आप डिडक्शन नहीं ले सकते, और ये कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं आपके पीएसयू की उस पर डिपेंड करता है, वो इसको किस कैटेगरी में दिखा रहे हैं, अलाउंस दिखा रहे हैं, उस रीइंबर्समेंट को किस प्रकार एक परक्विजिट होता है, मुझे लगता है उन्होंने परक्विजिट दिखाया होगा इसको, क्योंकि ये तो सारा फॉर्म 16 आपका देख के पता लगेगा, पर अंदाजा मुझे लग रहा है कि उन्होंने उसको परक्विजिट दिखाया है, तो इससे ये पता लग रहा है कि वो टैक्सेबल है। मुझे नहीं लगता कि आप इसको क्लेम कर पाएंगे, आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी भरिए, और 5% काटा है तो अगर फालतू कट भी गया है तो बाद में आपके जो भी टैक्स कंसल्टेंट है उनसे सलाह लीजिएगा, क्योंकि सारे दस्तावेज देखने के बाद इस पे निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो जो आप जिसे भी आप सलाह करते हैं वो देखेंगे, अगर वाकई में आपको लगता है कि टैक्सेबल नहीं है तो वो जो टैक्स कटा है आपका वो रिफंड हो जाएगा, वो एक्सेस टैक्स में चला जाएगा और बाकियों के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा जी।
योगेश फ्रॉम दिल्ली इज विद अस, वार्म वेलकम योगेश।
हेलो जी, नमस्कार सभी को
जी।
तो मेरा सवाल ये है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है इनके स्टॉक में, और कौन से कंडीशन में कौन सा स्ट्रेटेजी बेटर होता है?
योगेश नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग होता है जब आप किसी भी स्टॉक में लंबी अवधि के लिए उस कंपनी के विकास को देखते हुए आप निवेश करते हैं कि इस कंपनी का आने वाले 2 साल में 3 साल में 4 साल में अच्छा ग्रोथ होने वाला है, तो उसको हम तो बोलते हैं कि तीन चीजें मार्केट को प्रभावित करती हैं हर्ष और राजेश, तीन फैक्टर्स आप याद रखिएगा, अर्निंग्स। तो इसलिए कंपनी की अर्निंग्स अगर अच्छी हो रही है तो उसको ग्रोथ। वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है जहां पर आपको स्टॉक बहुत अच्छी कीमत पे मिल रहा होता है, जबकि उसकी जो असल में इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज्यादा होती है, पर किसी कारण से वो अभी लो प्राइस्ड है, तो उसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं कि फटाफट लीजिए, उसको तोड़ लीजिए, उसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। वहां पर आपको थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाता है, जबकि ग्रोथ में थोड़ा सा देर से वो रिजल्ट मिलता है लंबी अवधि में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ी सी बड़ी पैनी नजर चाहिए। योगेश, मुझे लगता है आपकी वो है और आप ग्रोथ वैल्यू दोनों को साथ लेके चलें।
राकेश और गुरुनाथ के पास जाने से पहले हम बता दें कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है और इसी वजह से केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात पर न्यूनतम मूल्य पूरी तरीके से हटाने का फैसला किया है। मौजूदा व्यापार चिंताओं और चावल की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। चावल की बढ़ती कीमतों और घरेलू बाजारों में आपूर्ति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगस्त 2023 में एक अस्थायी उपाय के रूप में $1200 प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम मूल्य तय किया गया था। बाद में अक्टूबर 2023 में ही न्यूनतम कीमत को $950 प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले चावल के निर्यात से किसानों की कमाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
US markets rose yesterday as investors honed in on the chance of a bigger interest rate cut by the Federal Reserve next week, with rate sensitive small cap stocks outperforming. The Dow Jones Industrial Average rose 297 points, or 0.7% to 41,394. The S&P 500 gained 30 points, or 0.5% to 5,626. And the Nasdaq Composite gained 114 points, or 0.7% to 17,684. All the three major U.S. benchmark indices ended close to nearly two-week highs. For the week, the S&P 500 surged 4% and the Nasdaq climbed nearly 6%, with both marking their biggest weekly percentage gains since early November. The Dow jumped 2.6% this week. Now we have Rakesh from Shimla with us. A warm welcome, Rakesh.
Ji, namaskar.
Namaskar. Sawal puche.
मेरा एक सवाल है कि मैं अगर 1-1.5 लाख तक ऋण लेना चाहता हूँ
जी,
तो उसमें मुझे छोटा व्यापार खोलना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ऋण लेना है, तो हमें कितने प्रतिशत जो है हमारे शिमला में ब्याज मिलेगा?
राकेश, आपके लिए मैं बहुत आसान रास्ता बताता हूं। आपको पता होगा सरकार ने मुद्रा योजना लॉन्च की हुई है, जिसके अंतर्गत छोटे साइज के लोन मिलते हैं। तो आप मुद्रा योजना के अंतर्गत आप जाएं, किसी भी बैंक में जाएं और आप वहां पर लोन बड़े आराम से ले सकते हैं, बहुत ही आसान दरों पर और बहुत ही आसान किस्तों पर यह लोन सरकार की तरफ से मिलता है। इसमें ज्यादा आपको सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी। मेरी सलाह, आप किसी भी सरकारी बैंक से तुरंत संपर्क करें।
गुरुनाथ जी, बहुत जल्दी से अपना सवाल पूछ लें, समय बहुत कम है।
जी सर, नमस्ते। सर मेरा अपना कोहली सर को भी नमस्ते।
नमस्ते गुरुनाथ
जी। सर, सर मैं अपने रुपये और डॉलर के बारे में थोड़ा पूछता हूँ
जी।
सर, ये जो अभी एक साल भर में कम से कम हमारा जो रुपये है वो 1% गिर चुका है, तो हमारा सब कुछ मतलब ठीक ठाक इकोनॉमी चल रही है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ठीक है, GDP रेट ठीक है, फास्ट ग्रोइंग करने वाली हमारी कंट्री, तो इसके मतलब क्या रीजन हो सकते हैं? और एशिया की सबसे
गुरुनाथ जी, क्योंकि समय कम है तो मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंड करती है, इसका अर्थव्यवस्था से बहुत सीधा सीधा संबंध नहीं रहता है हमेशा। और फिर कभी समय होगा तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से इस पर खोल कर बताऊंगा, क्योंकि मुझे राजेश और हर्ष इशारा कर रहे हैं कि समय हो गया, तो आपसे फिर जुड़ने की मैं इच्छा से।
बिल्कुल समय हो गया है, और तमाम श्रोता जो आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शरद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।
माय प्लेजर।
थैंक यू शरद फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, डोमेस्टिक मार्केट सर्ज टू फ्रेश हाई दिस वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी जंप 2%, सेंटर रिमूव्स द फ्लोर प्राइस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस, एंड US मार्केट्स राइज अहेड ऑफ फेड मीट नेक्स्ट वीक, ऑल थ्री मेजर इंडस्ट्रीज राइज टू नियरली two-week हाई। That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar.
मार्केट्स का।